नमस्कार भारत, 12 जुलाई दिन गुरुवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड का सपना चकनाचूर, करिश्माई क्रोएशिया पहली बार फाइनल में। भारत अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है कौन सी कूटनीतिक खींचतान।
ईरान हमको सिर्फ चौकन्ना कर रहा है कि आप हमारे साथ रिश्ता बदस्तूर जो पुराना रिश्ता है वो आप कंटिन्यू करते रहिएगा।
और दुनिया जहान में सुनिए दक्षिण कोरिया की तरक्की की कहानी।
कोरिया के लोगों में एक पैशन है, एक आग है उनको कि जो वो करते हैं वो पूरी ताकत से करते हैं, लगन से करते हैं।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत कौर से। क्रोएशिया ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रोमांच से भरे सेमीफाइनल मुकाबले में तय समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं। इसके बाद अतिरिक्त समय में मैच का फैसला हुआ। 108वें मिनट में क्रोएशिया ने निर्णायक गोल दागा। फुटबॉल विश्व कप का फाइनल रविवार को फ्रांस और क्रोएशिया के बीच खेला जाएगा। टीम की कामयाबी से खुश क्रोएशिया के लोगों ने सड़कों पर झंडे फहराकर जीत का जश्न मनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के सदस्य देशों से रक्षा बजट के लिए 2 गुना पैसा देने की अपील की है। नेटो के 2 दिवसीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इसके रक्षा बजट पर जीडीपी के 2% के बजाय 4% खर्च किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस बजट में 4.2% का योगदान देता है। इससे पहले कम खर्च देने के लिए उन्होंने जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल को आड़े हाथों लिया था, लेकिन इन आरोपों का खंडन करते हुए एंगेला मर्केल ने कहा था कि जर्मनी बड़ी तादाद में नेटो के अभियानों के लिए सैनिक भेजता रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी के साथ अच्छे रिश्ते होने की बात भी कही। उन्होंने कहा, नेटो की बैठक बहुत अच्छी चल रही है। हमने सैन्य खर्चों की बात की, हम व्यापार को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। जर्मनी के साथ हमारे रिश्ते बेहद अच्छे हैं। जबरदस्त सफलता हासिल करने के लिए मैं जर्मनी को बधाई देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि हम व्यापार और दूसरी कई चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें देखना होगा कि अगले कुछ महीनों में क्या होता है। ये थे अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इस बीच नेटो के सदस्य देशों के नेताओं ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछले महीने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ हुई मुलाकात का स्वागत किया है। एक बयान में नेटो के सदस्य देशों ने उत्तर कोरिया से परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों को खत्म करने का आग्रह किया। चीन और अमेरिका में ट्रेड वॉर गहराने की वजह से एशिया के शेयर बाजार में मंदी देखने को मिल रही है। जापान, हांगकांग और शंघाई में शेयर मार्केट 1-2% नीचे गिरे। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने चीन से आयात किए जाने वाले और 200 अरब डॉलर के सामान पर 10% शुल्क लगाने की अमेरिका की योजना पर हैरानी जताई है। चीन ने कहा कि अगर अमेरिका इस योजना पर अमल करता है तो उसे भी जवाबी कार्रवाई करनी होगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा कि इस ट्रेड वॉर से किसी को फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा, हम वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं जहां हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह का ट्रेड वॉर ना सिर्फ दो पक्षों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि इससे दुनिया भर के देशों का नुकसान होगा। इस लड़ाई में किसी की जीत नहीं होगी। ये थे चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग के शब्द। इसराइल की सेना ने पुष्टि की है कि उसने कब्जे वाले गोलान हाइट्स के नज़दीक सीरियाई सेना के ठिकानों पर हमले किए हैं। इसराइल ने कहा कि उसने ये जवाबी कार्रवाई के तहत किया। इसराइल का आरोप है कि सीरिया का एक ड्रोन इसराइली क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक घुस आया था, जिसके बाद उसने उसे मार गिराया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल एप्लीकेशन और फेसबुक पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। ये जश्न की वे आवाजें थीं जो बीती रात फुटबॉल विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल खत्म होने के बाद क्रोएशियाई राजधानी जागरेब की सड़कों पर सुनाई दे रही थीं। महज 40 लाख की आबादी वाला ये देश 1991 में वजूद में आया, 1998 में फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा और 2018 में फाइनल खेलने को तैयार है। और ये करिश्मा उसने किया है इंग्लैंड को हराकर, जहां फुटबॉल की जड़ें इतनी पुरानी हैं कि वो 1966 में ही विश्व चैंपियन बन गया था। देर रात तक अतिरिक्त समय तक खींचे मुकाबले में क्रोएशिया ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया। रिपोर्ट सुनिए आदेश कुमार गुप्त से।
Pivarić. Walker got there. So though did Perisic. Mandžukić! Croatia hit the front. Mario Mandžukić pounced. And England are hurt.
ये लम्हे हैं तब के जब खेल के 109वें मिनट में कल क्रोएशिया के मैडजुकेस को पेरिसिच के हेडर पर पेनल्टी बॉक्स में इंग्लैंड के गोलकीपर के दाईं ओर बॉल मिली और उन्होंने लेफ्ट फुट से क्रॉस शॉट जमा कर बॉल को जाल में पहुंचाया और स्कोर 2-1 कर दिया। ये गोल फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में क्रोएशिया को फाइनल में पहुँचाने और इंग्लैंड को बाहर करने वाला साबित हुआ। वैसे इससे पहले की मॉस्को के लुज़्निकी स्टेडियम में मौजूद 78,000 से ज्यादा लोग अभी अपनी सीट पर भी ढंग से बैठ पाते कि खेल के 5वें मिनट में ही इंग्लैंड के किरेन ट्रिपियरी ने फ्री किक पर अपने सामने खड़ी क्रोएशियाई खिलाड़ियों की दीवार और गोलकीपर के ऊपर से गोली की तरह बॉल को जाल में अटकाकर इंग्लैंड को 1-0 की बढ़त दिला दी। ये विश्व कप के सबसे खूबसूरत गोल में से एक था। मध्यांतर तक इंग्लैंड 1-0 से आगे रहा।
The first half for England has assuredly not. They lead in the World Cup semi-final by 1-0.
बस इसके बाद की कहानी क्रोएशिया के लिए इतिहास बन गई और इंग्लैंड इतिहास बनाने से चूक गया। खेल के 68वें मिनट में क्रोएशिया के पेरिसिच ने गोल बॉक्स में अपने साथी के मिले क्रॉस पास पर गोल कर क्रोएशिया को 1-1 की बराबरी दिला दी। इसके बाद तो क्रोएशिया इंग्लैंड पर हावी होता चला गया और अंततः 2-1 से जीतकर फाइनल में पहुंचा, जहां अब उसका सामना रविवार को फ्रांस से होगा।
इंग्लैंड विल प्ले इन सैटरडेज कंसोलेशन बट वी हैव आवर फाइनल मॉस्को 4 डेज फ्रॉम नाउ क्रोएशिया अगेंस्ट फ्रांस फॉर द राइट टू बी चैंपियंस।
रविवार का इंतजार जब क्रोएशियाई टीम मॉस्को के लुज़्निकी स्टेडियम में फ्रांसीसी टीम से खिताबी मुकाबला खेलेगी। क्रोएशिया की जीत कल खेल की दुनिया की इकलौती हैरत अंगेज घटना नहीं थी, एक उलटफेर टेनिस के कोर्ट पर भी हुआ। विंबलडन के 9वें दिन शीर्ष वरीयता प्राप्त स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी केविन एंडरसन से हार कर क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गए। ज्यादा जानकारी के साथ आदेश कुमार गुप्त।
किंग्स ऑफ ग्रास के नाम से मशहूर शीर्ष वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर हार कर बाहर हो गए। कोर्ट नंबर 1 पर 36 साल के फेडरर के सामने थे 32 साल के दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन। 8 बार विंबलडन जीतने वाले फेडरर ने क्वार्टर फाइनल में पहला सेट बेहद आसानी से 6-2 से जीता। फेडरर ने पूरा दमखम लगाने के बाद दूसरा सेट 7-6 से जीता, लेकिन इसके बाद की कहानी के नायक एंडरसन थे। उन्होंने तीसरा सेट 7-5 से और चौथा सेट 6-4 से जीतकर फेडरर को बाहर होने की आहट का एहसास कराया। आखिरकार पांचवां और अंतिम सेट एंडरसन ने 13-11 से अपने नाम कर पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचने का हक हासिल किया।
40-15 Anderson serves. Federer returns. That's gonna go wide. And Roger Federer is out.
कल ही 12वीं वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जापान के केई निशिकोरी को 6-3, 3-6, 6-2, 6-2 से हराया। इसके अलावा अमेरिका के जॉन इस्नर ने कनाडा के मिलोस रोनिच को 7-6, 6-4, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। और सेमीफाइनल में ही पहुंचे स्पेन के राफेल नडाल भी। दूसरी वरीयता हासिल नडाल ने अर्जेंटीना के युआन मार्टिन डेल पोत्रो को 7-5, 6-7, 4-6, 6-4, 6-4 से हराया।
खेल की खबरें आदेश कुमार गुप्त से सुन रहे थे आप।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत में ईरान के राजनयिक मसूद रजवानियन रहागी ने एक सेमिनार में कहा कि अगर भारत अन्य देशों की तरह ईरान से तेल का आयात कम करता है तो ईरान उसे मिलने वाले विशेष लाभों को वापस ले सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि चाबहार बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर भारत ने अपने निवेश के वायदे अभी तक पूरे नहीं किए हैं। ईरान के राजनयिक के इस बयान के मायने क्या हैं? क्या अमरीका के बाद अब ईरान ने भी भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है? यही पूछा बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद से।
अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले निकी हेली आई थी यहाँ पे, उन्होंने भी ये कोशिश की थी कि जो सैंक्शंस ईरान के खिलाफ अमरीका ने ईजाद किए हैं वो हम फॉलो करें, और उस टाइम तो ये भी स्टेटमेंट था कि पूरी तरह से यानी कि जीरो इम्पोर्ट्स ऑफ ईरानियन ऑयल, ये उन्होंने इंसिस्टेंस की थी। इसमें दो अलग बातें हैं। पहली बात है तेल की खरीदारी। तेल हम खरीद सकते हैं सऊदी अरब से, कुवैत से, अमारात से वगैरह, लेकिन जो क्वांटिटीज हमको चाहिए वो इतनी आसानी से अलग से नहीं मिलेंगी। ईरान हमको सिर्फ चौकन्ना कर रहा है कि आप हमारे साथ रिश्ता बदस्तूर जो पुराना रिश्ता है वो आप कंटिन्यू करते रहिएगा। हमारे विदेश मंत्री ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि इंडिया कोई नेशनल सैंक्शंस नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं और इंडिया सिर्फ यूएन सैंक्शन रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जहां तक मेरा ख्याल है, हमारा जो तेल खरीदने का रिश्ता है वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ज्यादा तब्दीली आएगी। शायद कुछ इमीडिएट फ्यूचर में थोड़े इंपोर्ट्स कम हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म में ये रहेगा।
चाबहार को लेकर भी कहा गया है कि भारत ने अपने जो कमिटमेंट्स हैं जो पहले किए थे उसको बदस्तूर जारी रखे, कुछ इस तरह की बात कही गई है।
चाबहार में मुझे लगता है कि इंडिया का पूरी तरह से कमिटमेंट है। इंडिया के लिए चाबहार प्रोजेक्ट और जो चाबहार से हमारा जो कॉन्टैक्ट, हमारे जो कनेक्टिविटी होगी अफगानिस्तान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ और रशिया के साथ, वो हमारे लिए बहुत अहमियत पाती है। तो मुझे लगता है कि चाबहार के प्रोजेक्ट्स तो आगे जाएंगे, और मुझे लगता है ये बात कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली में कि शायद अमरीका चाबहार प्रोजेक्ट को सैंक्शंस के दरमियान नहीं लाए। तो मुझे लगता है कि ये कुछ एक डिप्लोमेटिक आतिशबाजी चल रही है दिल्ली में अमेरिका की और ईरान की, और दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी पोजीशन है वो कायम रहे और वो जायज रहे।
ये थे सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद। आगे बढ़ते हैं। भारत के टेलीकॉम कमीशन यानी दूरसंचार आयोग ने नेट न्यूट्रलिटी को मंजूरी दे दी है। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि सभी को बिना किसी रोक टोक या बिना किसी भेदभाव वाला इंटरनेट उपलब्ध होना। पिछले कुछ समय से देश में नेट न्यूट्रलिटी को लेकर काफ़ी बहस छिड़ी हुई थी, तो क्या अब टेलीकॉम कमीशन के ताज़ा फैसले ने इस बहस का अंत कर दिया है? क्या अब इंटरनेट पर किसी तरह के एक्सेस या स्पीड को लेकर भेदभाव की आशंका खत्म हो गई है? बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने यही जानने के लिए बात की साइबर मामलों के जानकार वकील विराग गुप्ता से।
नहीं, अच्छा फैसला है, और फैसले के बाद देश में ओपन और फ्री इंटरनेट का जो वातावरण है वो बरकरार रहेगा। देश में जो स्टार्टअप के बारे में एक सरकारी नीति है और जो इंटरनेट के माध्यम से इनोवेशन के जो नए नए प्रकल्प चालू होने वाले हैं, तो नेट न्यूट्रलिटी का अगर पालन हो पाया तो यह एक बेहतर शुरुआत है, मैं इसको मानता हूँ। 8 महीने सिर्फ टेलीकॉम कमीशन ने इसके बारे में निर्णय लेने में लगाए। निर्णय के अनुसार जो टेलीकॉम कंपनियों के लाइसेंस एग्रीमेंट है उनमें नेट न्यूट्रलिटी का प्रावधान किया जाएगा। तो देखना ये दिलचस्प है कि जो ट्राई ने जो प्रशासनिक आदेश जारी किए थे उसकी तुलना में लाइसेंस में संशोधन अच्छी बात होगी, लेकिन संशोधन कब होंगे और कैसे लागू किया जाएगा यह अभी देखना बाकी है।
तो इसका क्या मतलब यह है कि भविष्य में ये बहस फिर उठ सकती है अगर जब तक ये संशोधन लागू नहीं हुए तो?
हाँ, भविष्य में बहस होने के अलावा इसमें समय कितना लगेगा और सारी कंपनियां अपने जो लाइसेंस में इसमें संशोधन कैसे होगा, और उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी रखे गए हैं, तो उन एक्सेप्शंस में क्या अभी अदालतों में उनको चुनौती मिलेगी या उनके अगर संशोधन नहीं किए जाएंगे तो उसके के लिए क्या कार्रवाई किया जाएगा। जो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो 5G आने वाला है उस 5G में जो उसके कुछ इनहेरेंट जो चीजें हैं उसमें शायद नेट न्यूट्रलिटी से कंप्रोमाइज होगा, तो 5G बनाम नेट न्यूट्रलिटी, इस पर इनोवेशन बनाम रेगुलेशन, ये कौन प्रिवेल करेगा, यह आने वाले समय में देखना अभी बाकी है।
साइबर मामलों के जानकार वकील विराग गुप्ता को सुन रहे थे आप। असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के फाइनल ड्राफ्ट की तारीख नज़दीक आने के साथ ही कुछ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। विदेशी होने के अभियुक्त लगभग 100 साल के बुजुर्ग चंद्रधर दास को हाल ही में जमानत पर छोड़ा गया है। भारत की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज होने के बावजूद एक ट्राइब्यूनल ने उन्हें विदेशी माना था। चंद्रधर दास को इस उम्र में हिरासत में लिए जाने को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सुनिए गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
असम की सिलचर सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा हुए चंद्रधर दास का समय अब बिस्तर पर गुजर रहा है। दरअसल इस वक्त उनकी तबीयत काफी नाजुक है और पूरा परिवार सदमे में है। चंद्रधर दास पर विदेशी नागरिक होने का आरोप है। इस वजह से उन्हें बीते 31 मार्च को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। उम्र के इस पड़ाव पर चंद्रधर दास को करीब 3 महीने डिटेंशन कैंप में बिताने पड़े। परिवार वाले चंद्रधर दास की उम्र 102 वर्ष बताते हैं, परंतु उनके पास मौजूद नागरिकता संबंधित पंजीयन प्रमाण पत्र में उनकी उम्र 90 साल है। कई संगठन इस उम्र में चंद्रधर की गिरफ्तारी को मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन बताते हैं। परेशानियों का सामना कर रहे चंद्रधर दास ने BBC से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे विदेशी होने का नोटिस देकर जेल में डाल देंगे। मुझे पहले थाने ले गए और बाद में सिलचर जेल भेज दिया गया। मैं एक भारतीय हूँ, हमारा परिवार यहाँ काफी पुराना है, मेरे पास भारतीय नागरिकता के कागजात भी हैं। ये थे चंद्रधर दास के शब्द। चंद्रधर दास की परेशानी अब भी खत्म नहीं हुई है। अभी विदेशी ट्राइब्यूनल में उनके मामले पर आगे कई सुनवाई होनी है। उनकी बेटी न्योति दास कहती है,
हमारे जो बापूजी को लेके गया, हमारी माँ भी परेशान है, भैया भी परेशान है, हम भी परेशान है, क्या करूँ, कैसे लाऊ बापूजी को। नोटिस आने की बात तो हम लोग जा नहीं पाया, बापूजी बीमार है, एक दिन बापूजी को आया है पुलिस उठा के लेके।
चंद्रधर दास 1966 में तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान के कोमिला जिले से भारत पहुंचे थे। त्रिपुरा में कुछ साल रहने के बाद उन्होंने असम के कछार जिले की बराग घाटी को अपना ठिकाना बनाया। चंद्रधर के गांव से सटे मोहनखाल गांव में भी 50 से अधिक लोगों को विदेशी नागरिक होने का नोटिस मिला है। इनमें ज्यादातर बंगाली भाषी हिंदू हैं। मोहनखाल गांव के निवासी प्रबुद्ध रंजन दास के परिवार के 11 सदस्यों को विदेशी बताया गया है।
विदेशी नोटिस हम 2015 में मिला है और अभी तक हम बहुत बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। इंडियन सिटीजन मेरा वोटर ID है, तो लैंड डॉक्यूमेंट है और हमारा PRC है।
असम में इस महीने की 30 जुलाई को अपडेट की जा रही राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाना है। बंगाली भाषी हजारों हिंदू और मुसलमान नागरिक व्याकुलता से अपने नाम के इस रजिस्टर में होने का इंतजार कर रहे हैं। दिलीप कुमार शर्मा, BBC सिलचर।
और अब समय है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरप्रीत कौर। बताइए गुरप्रीत
जी। कुलदीप, पहली खबर जो सभी अखबारों में प्रमुखता से दिख रही है वो है समलैंगिकता अपराध है या नहीं, केंद्र सरकार ने इसका फैसला कोर्ट पर छोड़ दिया है। और नव भारत टाइम्स ने एक हेडलाइन लगाई है इससे जुड़ी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और धारा 377 से जुड़ी इस खबर के साथ ही एक बॉक्स में एक और खबर दिख रही है जिसमें लिखा गया है, उसकी हेडिंग है, शादी के बाद दूसरी से संबंध अपराध ही रहने दें। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर कहा है कि शादी के बाद दूसरी किसी दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने को आईपीसी की धारा के तहत अपराध बने रहने देना चाहिए, ऐसे प्रावधानों से ही विवाह सुरक्षित हैं।
धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। जी
जी। इसके अलावा एक और खबर इंडियन एक्सप्रेस में दिख रही है, जिसमें महाराष्ट्र के धुले में मॉब लिंचिंग की वजह बने 3 वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया था, ये पुलिस ने जानकारी दी है। इस वीडियो से फैली अफवाह की वजह से महाराष्ट्र में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 25 दिनों में 9 लोगों को मार डाला और 10 लोग घायल हुए।
वो तीनों वीडियो फर्जी पाए गए हैं, ऐसा पुलिस ने बताया है। एक खबर जनसत्ता में पहले पन्ने में मैं देख रहा हूँ कि फ्रांस को पीछे छोड़कर भारत 6th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ये खबर जनसत्ता में पहले पन्ने पर है।
हाँ जी। और इसके अलावा एक और सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी खबर है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 7 जजों की बेंच का वो गठन करेंगे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित 2006 के उनके आदेश की समीक्षा करेगी। जी, 2006 में एक आदेश दिया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में इन जातियों के लोगों को आरक्षण दिए जाने को तो सही ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि इन जातियों की क्रीमी को इस तरह का कोई आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया गुरप्रीत कौर अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब वक्त है दुनिया जहान का। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन हाल ही में भारत आए थे। साल 1948 में आजाद हुआ दक्षिण कोरिया आकार और आबादी के लिहाज से बेहद छोटा है, लेकिन विकास के पैमाने पर इसने कई कीर्तिमान रच दिए हैं। दुनिया जहान में वात्सल्य राय ने आज पड़ताल की है दक्षिण कोरिया की तरक्की की।
दुनिया जहान। पूरी दुनिया मई के आखिरी हफ्ते में जब उत्तर और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपतियों के बीच दूसरी मुलाकात के मायने तलाश रही थी, कोरियाई पॉप के दीवाने एक अलग इतिहास रचे जाने की खुशी में डूबे थे। उस हफ्ते दक्षिण कोरिया के पॉप ग्रुप बीटीएस का म्यूजिक एल्बम अमरीकी पॉपुलरिटी चार्ट में पहले नंबर पर था। ये 12 साल में पहला मौका था जब कोई ऐसा एल्बम अमेरिका में धूम मचा रहा था जिसकी भाषा अंग्रेजी नहीं थी। कूटनीतिक व्यस्तताओं के बीच भी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन बीटीएस ग्रुप को बधाई देना नहीं भूले, लेकिन ये कामयाबी कोई अजूबा नहीं। ओपन गंगनम स्टाइल। कोरियाई गायक साई के गंगनम स्टाइल वीडियो ने भी इतिहास रच दिया था। एक वक्त ये YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो था। दक्षिण कोरिया की बादशाहत का मामला सिर्फ कोरियाई पॉप यानी के पॉप तक ही सीमित नहीं है। साल 1948 में आजादी पाने और 1953 तक उत्तर कोरिया के साथ संघर्ष में उलझा रहा ये मुल्क तकनीक और विकास के कई पैमानों पर भी अव्वल है। कई क्षेत्रों में ये ताकतवर पश्चिमी देशों को टक्कर दे रहा है। साल 2008 से 2011 तक दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत रहे स्कंद रंजन तायल इसे कोरियाई लोगों के जीवट से जोड़कर देखते हैं।
कोरिया के लोगों में एक पैशन है, एक आग है उनको कि जो वो करते हैं वो पूरे अपनी ताकत से करते हैं, लगन से करते हैं।
इस जुनून का असर आंकड़ों में भी दिखता है। जहाज यानी शिप और कंप्यूटर चिप बनाने में ये मुल्क पहले पायदान पर है। मोबाइल निर्माण के लिहाज से दूसरे और कार बनाने में 5वें नंबर पर है। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था निर्यात पर आधारित है। यहाँ की कंपनियां पूरी दुनिया में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मोबाइल फोन और कारें निर्यात कर रही हैं। निर्यात में वो दुनिया में 7वें नंबर पर है। विकास की ये कहानी जादुई लगती है तो इसकी वजह ये है कि आकार में दक्षिण कोरिया भारत के राज्य गुजरात से भी छोटा है। इसकी आबादी 5 करोड़ से भी कम है। ये 1945 तक जापान की गरीब कॉलोनी था और आजादी के बाद भी तमाम मुश्किलें इसे घेरे रहीं। उसके पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। 1960 के दशक तक इसकी 72% आबादी गांवों में थी और अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। फिर उसने तकनीक, आईटी और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बेमिसाल कामयाबी कैसे हासिल की? इस सवाल का जवाब देते हैं डॉक्टर रामा सुंदरम, जो साल 2006 से दक्षिण कोरिया में है।
people also care about the country. I think this is a collective.
कोरियाई लोग हमेशा अपने देश के बारे में सोचते हैं। यहाँ का विकास नेताओं और देश के लोगों के साझा प्रयास का नतीजा है। जब भी आप कोरियाई लोगों से बात करें तो वो कहते हैं वूरी नारा, जिसका मतलब है मेरा देश।
बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव कुछ महीने पहले दक्षिण कोरिया में थे। उन्होंने तकनीक और आईटी के क्षेत्र में इस देश की तरक्की को करीब से देखा।
कोरिया की जो मजबूती है वो इस बात से निकलती है कि वहाँ पर काम करने का कल्चर बहुत ज्यादा है। सोल में और तमाम जिन शहरों में हम गए वहाँ पर हमें दर्जनों लोग ऐसे मिले जो रोज 12 से 14 घंटे काम करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है।
कोरिया में राजदूत रहे तायल का आकलन है कि आर्थिक मोर्चे पर मिली तरक्की की कई वजह है। वो कहते हैं कि कोरिया ने आजाद होने के बाद शिक्षा पर बहुत काम किया। दक्षिण कोरिया में बदलाव की शुरुआत हुई तो इस मुल्क की छवि कॉपीकैट यानी नकल करने वाले देश की थी। हालांकि वहां के नीति निर्माताओं को ऐसी इमेज को लेकर कभी परेशानी नहीं हुई। रिसर्च के काम में जुटे डॉक्टर रामा सुंदरम कहते हैं कि कोरिया ने नकल और नए प्रयोगों को विकास का नारा बना दिया।
किसी दूसरे विकसित देश में अगर कोई तकनीक है तो यहाँ उसी तरह की तकनीक विकसित करने की कोशिश की जाती है, उस समय तक जब तक कि वो खुद की तकनीक न विकसित कर लें। कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक किताब जारी की है, अगर आप उस किताब को देखें तो उसमें कहा गया है इमिटेट एंड इनोवेट, ये विकास के लिए कोरिया का नारा है।
दक्षिण कोरिया में नई तकनीक विकसित करने पर बहुत जोर है। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कुल 4% हिस्सा तय है। डॉक्टर रामा सुंदरम,
कई संस्थान और कई प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हैं, वो कंपनियों को तकनीक देते हैं। यकीनन रिसर्च और डेवलपमेंट से कोरिया के विकास में मदद मिल रही है।
20वीं सदी के आखिरी दशक तक कोरिया आर्थिक मोर्चे पर लंबी छलांग लगा चुका था, लेकिन साल 1997 की मंदी ने उसे दिवालिया होने की कगार पर ला दिया। दक्षिण कोरिया ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से मदद मांगी। उसे दिसंबर 1997 में $58 अरब का बेलआउट पैकेज मिला। कर्ज में डूबे अपने देश को बचाने के लिए कोरियाई लोग आगे आए और सोना जुटाने की मुहिम शुरू की।
वहाँ पे बुढ़िया लेडीज आके अपने अपने गहने, बिल्कुल गरीब औरतों ने आके अपने गहने, वेडिंग रिंग्स, उनके पास कुछ भी नहीं था, लाखों वेडिंग रिंग्स लेके बता गई कि सब देश को जरूरत है और उनको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत थी।
एक मुल्क की एकजुट कोशिश का नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में सोने का भाव कम हो गया। जमा हुए सोने की कीमत करीब $2.2 अरब थी, जो कर्ज के मुकाबले काफी कम थी। लेकिन लोगों ने जो जज्बा दिखाया उसने दक्षिण कोरिया की तकदीर बदलने की गारंटी दी। तय वक्त से करीब 3 साल पहले यानी साल 2001 में दक्षिण कोरिया ने IMF का लोन चुका दिया। तब से इस देश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। डॉक्टर रामा सुंदरम कहते हैं कि तरक्की के तमाम मुकाम हासिल करने के बाद भी कोरियाई लोगों ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बड़े जतन से संजोया है।
वो अपनी संस्कृति को बहुत अहमियत देते हैं। तमाम विदेशी विश्लेषक कहते हैं कि पहनावे के आधार पर वो पश्चिमी देशों के लगते हैं, लेकिन दिल से वो 100% कोरियाई हैं। आप जहाँ कहीं भी जाएं, आपको कोरियाई डिश किंची मिलेगी। अपने हर त्योहार में वो एक गाना गाते हैं,
दक्षिण कोरिया एक दशक पहले ही $1 trillion अर्थव्यवस्था वाले देशों के क्लब में शामिल हो चुका है, लेकिन कई चुनौतियां अब भी सामने हैं। आबादी छोटी है और एक हिस्सा तेजी से उम्रदराज हो रहा है। तकनीक के विकास और निर्यात में चीन से कड़ी चुनौती मिलने लगी है, लेकिन फिर भी दक्षिण कोरिया को भरोसा है कि विकास का उसका पहिया थमेगा नहीं, उसे चुनौतियों को चित करने का हुनर आता है।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत कौर से।
बीबीसी समाचार। क्रोएशिया ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फुटबॉल विश्व कप का फाइनल रविवार को फ्रांस और क्रोएशिया के बीच खेला जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के सदस्य देशों से रक्षा बजट के लिए 2 गुना पैसा देने की अपील की है। इसराइल की सेना ने पुष्टि की है कि उसने कब्जे वाले गोलान हाइट्स के नज़दीक सीरियाई सेना के ठिकानों पर हमले किए हैं। इसराइल ने कहा कि उसने ये जवाबी कार्रवाई के तहत किया। एक अध्ययन में पाया गया है कि 4 साल पहले पश्चिमी अफ्रीका में जिन लोगों को इबोला संक्रमण हो गया था, ठीक होने के बाद अब भी उनमें से कई लोग मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जूझ रहे हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। स्टूडियो संभाल रहे थे कपिल देव सिंह और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचा रही थी सिंधु वासनी। तो अब मुझे यानी कुलदीप मिश्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।